रुपया हर किसी के पास रखा रह गया। भूख से तड़पकर लोग मर गए।
किसी के अकाउंट में 50,000 रुपये जमा हैं, किसी के पास 1,00,000, लेकिन सबके सब भूखे मर गए।
कैसे मर गए? भूख से मर गए, बीमार होकर मर गए, तड़प तड़प कर मर गए। पृथ्वी दोबारा आई और अपने बच्चों को रोते हुए तड़पते हुए देख करके कहा, बेवकूफो, हमने तुमसे कहा था कि हराम की कमाई, बिना मशक्कत की कमाई पाने की तुम इच्छा करोगे तो तुम मरोगे।
अब भी समय है कि अपनी मशक्कत की कमाई के ऊपर निर्भर रहना सीखो। मित्रों, यही है हमारा कर्मयोग। कर्मयोग अगर हमको आ जाए तब मजा आ जाए।
कर्मयोग किसे कहते हैं? इस संबंध में हमने आपको एक बात यह बताई थी कि काम को कर्मयोग में बदल देने के लिए थोड़े से सिद्धांतों को हमें समावेश करना पड़ेगा। पहला सिद्धांत यह है कि हमको अपने काम में दिलचस्पी पैदा करनी पड़ेगी, रुचि पैदा करनी पड़ेगी, उत्साह पैदा करना पड़ेगा। आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि हम कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और उन्नति का काम कर रहे हैं।
मित्रों, एक मूर्तिकार था, वह मूर्तियां बनाता था।
अपने बच्चे से भी कहता था कि बेटे, तुम भी मूर्तियां बनाओ। बच्चा अपने बाप के कहने के मुताबिक मूर्तियां बनाने लगा।
बाप की मूर्तियां 2 रुपये में बिकी और बेटे की मूर्तियां 3 रुपये की बिकी, 4 रुपये की बिकी, 5 रुपये की बिकी, 15 रुपये की बिकी।
बाप ने फिर कहा कि बेटे,
इसमें यह सुधार करना चाहिए, यह ध्यान देना चाहिए, जप और योग करना चाहिए, अर्थात अपने काम में ज्यादा से तन्मयता, दिलचस्पी और गहराई पैदा करना चाहिए। बाप बेटे को सिखा रहा था, लेकिन बेटा बाप से झल्ला पड़ा।
बोला, आपकी मूर्तियां 2 रुपये में बिकती थीं और हमारी 15 रुपये की बिकती हैं और आप हैं कि नुक्ताचीनी करते हैं। बाप सिर पर हाथ रखकर बैठ गया।
बोला, बेटे, अब तेरी उन्नति का रास्ता बंद हो गया।
मैं चाहता था कि 15 रुपये की मूर्ति 25 रुपये में क्यों नहीं बिके, लेकिन अब 15 से 14 में बिकेगी, 13 में बिकेगी, 12 में बिकेगी। तूने समझा कि अब इस काम में मन लगाने की, दिलचस्पी लेने की, तबीयत लगाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ चल रहा है सो ठीक है।
मित्रों,
हमारी और आपकी मान्यता यही है कि जो कुछ चल रहा है सो ठीक है, उसमें हम गहराई नहीं पैदा करना चाहते,
उसमें हम दिलचस्पी नहीं लेना चाहते, हम उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ाना चाहते।
हमें क्या करना चाहिए? जो काम है उसमें हमें इतना ज्यादा तन्मय हो जाना चाहिए, इतना ज्यादा खो जाना चाहिए कि वह काम हमारे मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम दोनों को मिला करके बेहतरी वाला श्रम बना हुआ दिखाई पड़े। यह क्या हुआ?
कर्मयोग।
काम करने में और कर्मयोग में यही फर्क होता है। जो काम केवल शरीर से किया जाता है, थकान समझकर किया जाता है, दुर्भाग्य समझकर किया जाता है, वह काम है। कर्मयोग में क्वालिटी बढ़ाई जाती है। क्वालिटी वह है जिसमें आदमी उत्साह से काम करता है, दिलचस्पी से करता है और मनोयोग से करता है, अपना कर्तव्य समझकर काम करता है।
मित्रों,
दूसरा यह कि काम को आदमी ईमानदारी से करता है। आज हमारे हर काम में बेईमानी जुड़ी हुई है। जो काम करता है उसमें हम यह समझते हैं कि बेईमानी से पैसा कमाया जा सकता है, बेईमानी से मालदार बना जा सकता है। दूध बेचने वाला भी कहता है कि हम बेईमानी से मालदार बने हैं। मसाले में मिट्टी मिलाने वाला दुकानदार भी यही कहता है कि हम तो बेईमानी से मालदार बने हैं। ईमानदारी की बात तो यह है कि बेईमानी से मालदार नहीं बना जा सकता। दुकान पर आपने बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ शुद्ध दूध मिलता है,
गलत साबित करने वाले को 100 रुपये इनाम दिया जाएगा।
लोग आते हैं और दूध ले जाते हैं क्योंकि यहाँ ईमानदारी का विज्ञापन हो रहा है न। ईमानदारी का विज्ञापन करके अपने आप को ईमानदार साबित करते हैं और लोग ले जाते हैं और आप मालदार बन जाते हैं। अगर बेईमानी में कमाने की ताकत है तो आप इस बोर्ड को हटवा दीजिए और एक नया बोर्ड लगाइए और उसमें लिखवा दीजिए कि यहाँ दूध में 50% पानी और अरारोट मिलाकर बेचा जाता है और ब्लॉटिंग पेपर की मलाई जमाई जाती है।
साबित करने वाले को 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा, फिर देखिए क्या परिणाम निकलता है। मित्रों,
आपने ईमानदारी को, ईमानदार का दोहन किया है।
आपने नकली ईमानदारी से फायदा उठाया है। असली ईमानदारी होती तब, असली ईमानदारी होती तो जाने क्या से बना देती। असली ईमानदारी वेस्ट एंड वॉच कंपनी की है। इसका शेयर 20 गुना ज्यादा है। 100 रुपये का शेयर 2,000 रुपये का बिकता है। यह कंपनी अपनी मूल लागत का 20 गुना मुनाफा लेती है। 2 रुपये की असली लागत 20 गुना अधिक कमाती है, अर्थात 40 रुपये कमाती है।
क्या वजह है? वजह यह है कि जब घड़ी तैयार हो जाती है तो सारी की फैक्ट्री में सजा दी जाती है और इंजीनियर घूमता रहता है। 24 घंटे में किसी भी घड़ी में 1 सेकंड का भी फर्क पड़ता है तो वह उतार ली जाती है और रिबिल्ट करने के लिए फैक्ट्री में भेज दी जाती है। फिर जब यह विश्वास हो जाता है कि 24 घंटे में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है तब इसको बाहर निकालते हैं और तब इसको रिलीज करते हैं।
उसने अपनी ईमानदारी और प्रामाणिकता के आधार पर सारी दुनिया पर विश्वास जमाया, सारी दुनिया पर धाक जमाया। मित्रों, ईमानदार होने का, शरीफ आदमी होने का अर्थात ईमानदारी और शराफत का सिक्का अगर आप किसी पर जमा सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह आदमी आपका गुलाम हो जाएगा। आप उससे जो भी पैसा मांगेंगे दे देगा। एक बार मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी का यह किस्सा आपको सुनाया था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर यह छाप डाल दी थी कि हम ईमानदार आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, हम भले आदमी हैं।
मनुष्य की सबसे बड़ी इज्जत इस बात में है कि वह शरीफ हो, ईमानदार हो और जिम्मेदार हो।
आज हम शराफत और जिम्मेदारी को भूल बैठे हैं।
एक एक पग पर हमारी बेईमानी टपकती है, गैर जिम्मेदारी टपकती है। गैर जिम्मेदारी और बेईमानी हमारे हर कदम पर चलती रहती है। हम रुपया नहीं चुराते तो समय चुराते हैं।
बात एक ही हो गई। आपने फॉर्म भरा था,
उस प्रतिज्ञा पत्र में क्या भरा था? यही भरा था कि हम आपके यहाँ 7 घंटे काम करेंगे। अब यह बताइए कि आप 7 घंटे काम करते हैं कि नहीं करते?
नहीं महाराज जी, नहीं करता।
2.5 घंटे काम करता हूँ, 4 घंटे घूमता रहता हूँ।
रुपया चुराना और समय चुराना दोनों एक ही बात है। चोरी तो चोरी है। चोर कभी मालदार हुए हैं? चोर कभी मालदार नहीं हो सकते। डाकू कभी मालदार हुए हैं? इनको ढेरों रुपयों की आमदनी हुई है, पर ये कभी मालदार नहीं हुए। मालदार होने के लिए, कर्मयोगी होने के लिए यह आवश्यक है कि आपके कामों में ईमानदारी जुड़ी हुई हो। अगर आपके काम के साथ ईमानदारी जुड़ी हुई होगी तो आपकी बख्त इज्जत न केवल संसार में वरन भगवान के यहाँ बढ़ती हुई चली जाएगी और आप उसी कर्म के आधार पर ऊंची से स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। बेकार की बातें तो बहुत बकते हैं, लेकिन काम के प्रति ईमानदारी आपने समावेश ही नहीं किया।
आप हनुमान जी को पूजेंगे, लक्ष्मी जी को पूजेंगे, फिर काम को क्यों नहीं पूजते? इसमें ईमानदारी का समावेश कीजिए।
आप जो भी काम करते हैं उसको ईमानदारी के साथ मिला दीजिए और देखिए कि संसार की उन्नति और आपकी उन्नति होती है कि नहीं होती। आप मन लगाकर काम कीजिए और फिर देखिए कि आपको दूसरे आदमी कितनी सहायता करने के लिए खड़े हो जाते हैं।
मित्रों,
शीरी और फरहाद का किस्सा ऐसा ही है।
फरहाद एक राजकुमारी से शादी करना चाहता था। राजकुमारी उसको मोहब्बत करती थी। उसके पिता को जब यह पता चला कि फरहाद हमारी लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया।
उसने कहा कि इसे मार डालो। मार डालने का हुक्म देने वाला ही था कि मंत्री ने कहा कि महाराज जी, एक और उपाय है मार डालने का, इससे आपकी कन्या को बुरा भी नहीं लगेगा।
उसने फरहाद से कहा कि यदि तुम राजकुमारी से शादी करना चाहते हो तो पहाड़ को खोद कर वहाँ नहर निकाल करके दिखाओ, तब हम तुम्हारा ब्याह कर देंगे। पहाड़ को खोद करके नहर, और वह भी एक अकेला गरीब आदमी, कंगाल आदमी, नहीं ला सकता। लेकिन एक शक्ति है जिनका नाम है विश्वास। आदमी ने अपने विश्वास की शक्ति को कभी पहचाना नहीं। हम विश्वास की शक्ति को भूल गए।
यदि लगन के साथ, उत्साह के साथ, विश्वास के साथ, संकल्प के साथ किसी काम को करने के लिए तरीके से खड़े हो जाएं, तो हम नेपोलियन बोनापार्ट के तरीके से आल्पस पर्वत को चकनाचूर कर सकते हैं। नेपोलियन ने आल्पस से यह कहा था, आल्पस आपको हमारे लिए रास्ता देना चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो हम पैरों तले आपको रौंद कर फेंक देंगे।
हम आपको रौंद कर निकल जाएंगे।
आल्पस के बारे में दुनिया यह कहती थी कि आज तक इसको कोई पार कर नहीं सका।
नेपोलियन के संकल्प ने उसे पार कर दिया। यह है आदमी का विश्वास, आदमी का संकल्प। आदमी का यह संकल्प, यह विश्वास बड़ा जबरदस्त है। मित्रों,
यह पृथ्वी जिस पर आप सवार हैं, जिस पर आप निवास करते हैं, एक जगह पर इसका एक बैलेंसिंग प्वाइंट है।
इसको अगर आप तलाश कर लें और वहां चले जाएं
और वहां घूंसा मार दें, आप जानते हैं कि इससे पृथ्वी में क्या हो सकता है? यह पृथ्वी अपनी जिस कक्षा में घूम रही है उस कक्षा को छोड़ देगी और कहीं ऐसी जगह घूमने लगेगी,
इतनी लंबाई चौड़ाई में घूमने लगेगी।
हो सकता है आपका 24 घंटे का दिन 100 घंटे का होने लगे। यह भी हो सकता है कि उसमें सर्दी या गर्मी बेहद हो जाए, और यह भी हो सकता है कि हमारी पृथ्वी दूसरे ग्रह में टक्कर मारे और चकनाचूर हो जाए। अगर एक आदमी एक घूंसा मार दे तब पृथ्वी जड़ है और हम चेतन हैं।
चेतन के संकल्प से विज्ञान की सारी प्रगति दिखाई पड़ रही है। कैसे?
उद्यान के तरीके से, बगीचे के तरीके से, नुमाइश के तरीके से बनाकर खड़ा कर दिया।
यह आदमी के संकल्प का फल है।
आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व आपने जन्म लिया होता तो मालूम पड़ता कि यहाँ क्या कर रखा है।
तब यहाँ गड्ढे ही थे, यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन मनुष्य ने कैसे खुशहाल बना दिया। कैसे यहाँ ताजमहल बने हुए हैं, बिजली घर बने हुए हैं। यह आदमी के संकल्प का परिणाम है।
आदमी के परिश्रम का परिणाम है।
मित्रों, फरहाद चला गया और पहाड़ खोदने लगा। पहाड़ खोदते समय पहले लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, असहयोग किया,
फिर कहा कि अच्छा हम तेरी मदद करेंगे, क्योंकि जब नहर बनेगी तो हमारे यहाँ भी आ सकती है,
हमको भी पानी मिल सकता है। सब चिपक गए।
चिपक जाने के बाद में बड़ा मजा आया।
नहर बनकर तैयार हो गई। यह है मनुष्य का संकल्प और मनुष्य का परिश्रम।
तो क्या संकल्प और परिश्रम में, विश्वास में भगवान मदद करता है? हाँ बेटे, भगवान भी मदद करता है।
टिटहरी क्या कर रही थी? समुद्र टिटहरी का अंडा बहा ले गया था।
टिटहरी ने अपनी चोंच में बालू भरकर उसमें डालना शुरू कर दिया।
उसने कहा हमारे अंडे दीजिए।
समुद्र ने कहा कि हम नहीं देते।
अच्छा, तो हम आपको सुखा देंगे।
अच्छा, तू हमें सुखा देगी?
हाँ, सुखा दूंगी, क्योंकि हमने संकल्प किया है कि अपने अंडे लेकर रहूंगी। मित्रों, आदमी का संकल्प, प्राणी का संकल्प, चेतना का संकल्प कितना शक्तिशाली होता है, इसे गिलहरी ने प्रत्यक्ष कर दिखाया। चेतना का संकल्प लेकर के ऋषि बैठे हुए थे।
वे दूर से दूरबीन से देख रहे थे और कह रहे थे कि ओ
चेतन प्राणी, जो यह संकल्प लेकर चला है, डू आर डाई, अर्थात हम करेंगे या मरेंगे,
तू धन्य है,
तेरा संकल्प पूरा होकर रहेगा।
अगस्त्य ऋषि ने कहा तेरा संकल्प हम पूरा करेंगे, और उन्होंने समुद्र का सारा पानी एक चुल्लू में पी लिया।
मित्रों,
यह कहानी भी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो सिद्धांत है वह 16 आने सच है कि जब तू काम करने के लिए खड़ा हो जाएगा, पुरुषार्थ करने के लिए खड़ा हो जाएगा, तो ढेरों आदमी तेरी मदद करेंगे,
भगवान तेरी सहायता करेंगे, दूसरे लोग सहायता करेंगे, हजारों लोग सहायता करेंगे। बेटे, तेरा रास्ता खुलता हुआ चला जाएगा।
तू हमारा यह सिद्धांत मान ले, हम तेरी बात मान लेंगे कि यह एक कहानी है और यह गलत है कि आदमी के पेट में समुद्र कैसे समा सकता है, और जब वह पेशाब करने बैठेगा तो कितना टाइम लगेगा, हजारों लाखों वर्ष लग जाएंगे, कहाँ तक पेशाब करेगा। लेकिन हमारी यह बात सही है कि आदमी का संकल्प इतना तीखा, इतना पैना होता है कि दुनिया को बदल सकता है।
मित्रों, कर्म की विशेषता यह है कि इसमें ईमानदारी जुड़ी हुई हो, शक्ति जुड़ी हुई हो, संकल्प जुड़ा हुआ हो, काम में इतना अधिक मजा आने लगे कि आदमी भूल जाए कि इसमें हमको फल मिलेगा, आनंद मिलेगा।
फल तो बेटे हमारे हाथ में नहीं है। आपने परीक्षा की तैयार की, लेकिन हम आपको यह वायदा नहीं कर सकते कि आप पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, क्योंकि यह परिस्थितियों पर टिका हुआ है। संभव है कोई ऐसा पर्चा पेपर आ जाए जो आपको नहीं मालूम हो। संभव है कि कॉपी चेक करने वाला आदमी गुस्से में भरा बैठा हो और उसका मूड खराब है, और वह 30 नंबर की जगह 11 नंबर दे दे और आपको फेल कर दे। यह परिस्थितियों के ऊपर है, यह आपके हाथ की बात नहीं है। काम के परिणाम आपकी मर्जी से मिलेंगे बेटे, हम यह वायदा नहीं कर सकते। काम के परिणाम में आदमी का श्रम एक इकाई है, बाकी इकाइयां नहीं हैं। बहुत सी चीजों को मिला करके सफलता मिलती है,
इसलिए सफलता के लिए पराश्रित न हो।
जब हम काम में ही संतोष करने लगे, काम और श्रम हमको ऐसा मालूम पड़ने लगे कि हम किसी फल का इंतजार करने के लिए खुशी को साथ में न बेचें,
काम को खुशी के साथ मिलाकर रखें,
इसे ही कर्मयोग कहते हैं।
मित्रों,
हमने काम किया, ईमानदारी से किया, पूरी जिम्मेदारी से किया, पूरे मन से किया, तब भी यदि असफलता मिली तो हम क्या कर सकते हैं?
बेटे,
बहुतों को असफलता मिली है। असफल होना कोई गुनाह नहीं है, असफल होना बेइज्जती नहीं है। दुनिया में ढेरों आदमी असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने काम को ईमानदारी से किया, जिसका उन्हें घमंड बना रहा, गर्व बना रहा।
ईसा मसीह सफल हुए कि असफल? ईसा मसीह ने सारी जिंदगी भर धर्म का प्रचार किया, उनके 13 चेले बने,
13 में से क्या हुआ?
उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, उनके ऊपर 30 रुपये का इनाम था कि जो कोई भी ईसा मसीह को गिरफ्तार करवा देगा उसे 30 रुपये का इनाम दिया जाएगा। एक चेले ने पुलिस से कहा कि लाइए 30 रुपये, हम अपने गुरु को गिरफ्तार करवा देते हैं। एक चेले ने गुरु को गिरफ्तार करवा दिया और 30 रुपये लेकर के चला गया। ईसा मसीह जब गिरफ्तार हो गए तो उनमें से 11 चेले गायब हो गए, उन्होंने अपने नाम व पते बदल दिए, एक चेला रह गया। जब ईसा मसीह को फांसी की सजा हुई तो उनको मजिस्ट्रेट के यहाँ से फांसी घर ले जाया गया।
जब उन्हें ले जा रहे थे तो वह चेला भी साथ साथ चला गया और रोने लगा।
गुरु की मृत्यु की बात जानकर उसको बड़ा दुख हो रहा था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
क्यों रे, तू भी इसके संत का है?
चेला बहुत घबराया, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ा।
उसने कहा कि मैं कसम खा करके कहता हूँ कि मैं इसे नहीं जानता कि यह कौन है। तो फिर तू रोया क्यों? इसलिए रोया कि बेचारे से गलती हो गई, जिसकी वजह से फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है।
मित्रों, अब बताइए कि ईसा असफल हो गए कि सफल, असफल सुकरात असफल थे कि सफल, असफल भगत सिंह असफल हो गए कि सफल, असफल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई असफल हो गई कि सफल, असफल ऋषि दधीची असफल हो गए कि सफल, असफल हो गए, बेचारे को अपनी हड्डियां तक देनी पड़ी।
ये सभी नुकसान उठाने वाले लोग हैं जिनको लोगों ने जिंदगी में बेवकूफ कहा होगा, उल्लू कहा होगा और यह कहा होगा कि धर्म के नाम पर तूने क्या पा लिया असफलता। इतिहास में दुनिया में जितने लोग असफल हुए हैं उनसे ज्यादा सफल हुए हैं, लेकिन जिनको हम असफल होते हुए भी कीर्ति गाते हैं, गौरव गाते हैं, वे वह लोग थे जिन्होंने सफलता असफलता के बारे में कभी विचार ही नहीं किया। उन्होंने केवल यही विचार किया कि हम अपना कर्तव्य करते हैं, हमें खुश होना चाहिए।
जिन्होंने खुशी को अपनी मुट्ठी में रखा उन आदमियों को मैं कर्मयोगी कहता हूँ।
जो लोग इस बात के इंतजार में लगे रहते हैं कि ऐसा हो जाए तो खुशी मिल जाएगी, वैसा हो जाए तो नाखुशी हो जाएगी। बेटे, अगर उन्होंने परिणामों के ऊपर अपनी खुशी और नाखुशी को मास्टर करके रखा है तो आपको खुशी के बाबत कोई वायदा नहीं किया जा सकता।
मित्रों,
परिस्थितियों के बारे में आप कुछ भी गारंटी नहीं कर सकते। परिस्थितियां ऐसी हों कि न हो, परिस्थितियां उल्टी भी हो सकती हैं और अच्छी भी हो सकती हैं। परिस्थितियां आपके हाथ की बात नहीं, वे आपके बेकाबू की बात है। इसलिए कर्मयोग के सिद्धांत जो हम आपको सिखाने वाले हैं और जो आपको संपत्तिवान बना सकते हैं, जो आपको प्रगतिशील बना सकते हैं, जो आपके लिए संपदाएं ला सकते हैं, जो आपके लिए खुशहाली ला सकते हैं, जिसको हम कर्मयोग कहते हैं।
बेटे,
कर्मयोग बड़ी शानदार चीज है। कर्मयोग केवल सांसारिक चीजों के लिए नहीं, वरन आदमी की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी मदद कर सकता है। जो लोग केवल माला घुमाने को ही भजन मानते हैं, अपने को अध्यात्मवादी कहते हैं, वस्तुतः वह कोई भजन नहीं है, अध्यात्म नहीं है। भजन जो है, अध्यात्म जो है, वह आदमी की क्रियाओं से ताल्लुक रखता है, भावनाओं से ताल्लुक रखता है और समूचे व्यक्तित्व से ताल्लुक रखता है। भजन करने वाले हमने डाकू, चोर और हरामखोर और मक्कार ऐसे ऐसे देखे हैं जो भजन के नाम पर न जाने क्या से करते हैं। डाकुओं को हमने देखा, वे नवरात्रियों में 9 दिन पानी पीकर रहते हैं और डाका डालते हैं, हत्या करते हैं, कत्ल करते हैं और फिर देवी को बकरा चढ़ाते हैं, देवी के लिए 9 दिन का उपवास करते हैं। इस तरह के चोर और चालाक एवं षड्यंत्र रचने वालों और भजन करने वालों का नाम अध्यात्मवादी नहीं हो सकता। भजन करने वालों को हम केवल पुजारी कह सकते हैं, अध्यात्मवादी नहीं कह सकते। अध्यात्मवादी वे हैं जिन्होंने भजन को अपने रोम रोम में, अपनी क्रियाओं में और अपनी विचारणा में शामिल कर लिया है।
मित्रों,
मैं क्या कह रहा हूँ?
मैं यह कहा कि आप कर्मकांड का, अपनी क्रिया का महत्व नहीं समझते, आप ईमानदारी का महत्व नहीं समझते, निष्ठा का महत्व नहीं समझते, दिलचस्पी का महत्व नहीं समझते, तप का महत्व नहीं समझते।
अगर इन बातों का महत्व नहीं समझते तो मैं कैसे मानूं कि आप अध्यात्म का महत्व नहीं समझते हैं और अध्यात्म के सिद्धांत का महत्व समझते हैं? आप तो केवल हवाई बातों पर विश्वास करते हैं जिनको जादू कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। जादू और चमत्कार, इन्हीं के चक्कर में हर आदमी फंसा हुआ है।
आपके लिए अध्यात्म माने हैं जादू और चमत्कार?
नहीं महाराज जी,
आप तो ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे पैसा आए, धन आए, लक्ष्मी आए। आप संतान पाने का मंत्र, लक्ष्मी पाने का मंत्र, मुकदमा जीतने का मंत्र बता दीजिए।
बेटे, हमको मंत्र कहाँ आते हैं तो किससे पूछूं?
उनसे पूछकर आ इंदिरा गांधी से।
क्या पूछूं? यह पूछ कि आप तो भारतवर्ष की प्रधानमंत्री हैं, आप हमें संतान पाने का, लक्ष्मी पाने का और मुकदमा जीतने का मंत्र बताइए। पागल हो गया है क्या? हमको मंत्र कहाँ आते हैं? तो फिर आपका नाम प्रधानमंत्री क्यों है? बेटे, मंत्र का नाम है विचार और तंत्र का नाम है कर्म। विचार का नाम है मंत्र और कर्म का नाम है तंत्र। मंत्र और तंत्र, कर्म और विचार।
नहीं महाराज जी, यह तो झगड़ा है।
तो आपका क्या चाहते थे?
महाराज जी, मैं जादू वाला मंत्र चाहता हूँ।
कौन सा वाला?
वो मैं हिरणकी चामुंडाए बिच्चे। इससे क्या हो जाएगा? तेरा दिमाग खराब हो जाएगा।
पागल कहीं का, बेकार की बातें करता है।
बेटे, कर्म की, पुरुषार्थ की बातें कर।
कर्म जो हमें महान बनाते हैं, ऊंचा उठाते हैं, उसके बारे में आप तो समझते हैं नहीं। जाने कहां कहां से क्या क्या करते रहते हैं। इस हालत में संपत्ति आ सकती है, ऐसी हालत में संपत्ति नहीं आ सकती। हमको उन्नतिशील जीवन जीने के लिए, संपत्तिवान जीवन जीने के लिए, भौतिक जीवन में उन्नति करने के लिए वह काम करने चाहिए जो हमने किए हैं।
महाराज जी,
आपने कौन सा काम किया और कौन सा मंत्र सीखा? बेटे, हमने कई आदमियों से मंत्र सीखे हैं।
उनमें से एक तो हमारे गुरु थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संचालक महामना मालवीय जी। वहां हमारे पिताजी ले गए थे और हमारा जनेऊ संस्कार कराकर लाए थे।
एक गुरु हमारा वह है जो हिमालय पर रहता है। हमारे बहुत से गुरु हैं,
उनमें से एक गुरु महात्मा गांधी जी भी हैं। महाराज जी,
आप वहां से क्या सीख करके आए? वहां से हम यह सीख करके आए कि अपने काम में कैसे तन्मय होना, मुस्तैद होना, दिलचस्पी से करना चाहिए।
गांधी जी ने मुझसे कहा, बच्चे,
यहां इस आश्रम में जो भी आदमी आता है उसको हम कर्मयोग पढ़ाते हैं कि अपने काम को पूरी मुस्तैदी से करना चाहिए, पूरी दिलचस्पी से तन्मयता के साथ करना चाहिए।
यही वह मंत्र है जिसे हम सीख कर आए और सांसारिक जीवन में उन्नतिशील और भौतिक जीवन में प्रगतिशील होते हुए चले गए।
यह मंत्र हमको गांधी जी ने सिखाया था और आज हम आपको सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने कर्मयोग के इन सूत्रों को, मंत्रों को यदि अपने जीवन का अंग बना सके तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप भी महामानवों की श्रेणी में सम्मिलित हो सकते हैं। आज की बात समाप्त।
ओम शांति।